शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं जंजस जम्मिदेशे जेन विहानेन जम्नि कालं मे नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहवमरणं वा तं तस्सतं मिदेशे तेन विहानेन तं मि कालं मे कोसकदिवारेदुम् इन्दो वातः जिनेन्दो वा एवं जोनिश्चयदो जानदि दौवाणि सौवपज्जाये सो सत्ति सुतो जो संकदि सौकुदिति।
अभी पहले हमने नमोकार मंत्र गाया, उसके बाद ये मंगलाचरण भी गाया है। तो मेरा प्रश्न है आपसे, ये नमोकार मंत्र लिखित रूप से कहाँ पाया जाता है और ये जो मंगलाचरण है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ कौन से ग्रंथ से हमने लिया? हाँ बेटा बोलो, बैठ के बोलो। नमोकार मंत्र लिखित रूप से कहाँ से लिया हमने? षटखंडागम, कितवे नंबर का सूत्र क्या है? मंगलाचरण, ये षटखंडागम का सबसे पहले जो लिखित रूप से ग्रंथ रचना हुई थी किसने लिखी थी? पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने षटखंडागम की जो रचना की है उसका सबसे पहले सूत्र रूप जो मंगलाचरण है उसका नाम, उसी को हम नमोकार मंत्र रूप से हम रोज बोलते हैं। और ये जो दूसरी गाथा है हमने पढ़ी थी वो, हाँ बोलो, हाँ कार्तिकेयन उपेक्षा, किसने लिखी थी? स्वामी कार्तिकेयन आचार्य हुए थे, वे समयसार से पहले वो लिखा गया था ग्रंथ के पश्चात में। कार्तिकेयन उपेक्षा कब लिखा गया था? हाँ कोई पहले बता दो, कोई बाद में बता दो, किसी का तो उत्तर सही आना है। हाँ समयसार के पहले, बहुत पहले, कार्तिकेय स्वामी कुनकुंदा आचार्य के पहले हुए थे और उन्होंने ये ग्रंथ रचना की है जिसमें 12 अनुप्रेक्षाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। और षटखंडागम तो सबसे पहली लिखित रचना है। अभी हम यहाँ से जो विषय शुरू करने वाले हैं, पुस्तक का नाम है जिनागम का कारण कार्य रहस्य। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हमारी अनादि से जो मिथ्या तो चल रहा है तो उसमें कारण विपरीतता चल रही है। क्या चल रही है? आपने विपरीतता के अन्य कोई नाम सुने हैं? कौन कौन सी विपरीतता जीव करता आया है अनादि से? हाँ पीछे कौन कौन सी विपरीतता हो रही है उसके जानने में कौन बोल रहे हैं? नहीं मैं बच्चों से पूछ रही हूं, आपको तो पता है बहन जी, मुझे पता है। हाँ हाँ बोलो। हाँ बैठिए, और कोई बताना चाहता है? तीन विपरीतता चल रही है। हाँ बोलो बहन, आप अभी मदद करो इन लड़कों को। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता। हाँ फिर बताना, रिपीट करना है आपको, कौन सी तीन बताएं? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता। और हमें ये विपरीतता को टालकर सही ज्ञान करके अपने स्वरूप का अनुभव करना हमारा प्रयोजन है। तो ये जो यहाँ पुस्तक जो है कारण कार्य रहस्य, किसका? जिनागम का। जिनेन्द्र भगवान ने जो बातें बताई है, दिव्य ध्वनि में जो बातें आई है, गणधर ने सुनकर ये द्वादशांग की यानी 12 अंगों की रचना की है। और उस जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो मूल में बताया हुआ उपदेश है, जो 12 अंगों के द्वारा गणधरों ने रचा था और जो आचार्यों की परंपरा से आज तक हमें उपलब्ध है, मूल बातें तो रहेगी, कितनी बातें तो नष्ट हो गई है काल के ओघ में, फिर भी जो मूल बातें जो हमें आत्मानुभव करने के लिए आवश्यक बातें है, हम इतने भाग्यवान है कि वो सारा का सारा माल अभी उपलब्ध है और हम उसको जानकर अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ये केवल अभ्यास करके परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिख के अच्छे मार्क्स मिल के डिग्री हासिल करना ये अपना प्रयोजन नहीं है। मनुष्य भव इतना दुर्लभ में दुर्लभ है, यदि हम आगम से सही रूप से उसकी दुर्लभता पहचाने तो नींद उड़ जाए, भय से जीव कांपने लगे, ऐसी ये बात है। ऐसे दुर्लभ में दुर्लभ मनुष्य भव हमने पाया है, दुर्लभ में दुर्लभ जिनेंद्र भगवान के कुल में हम जन्मे हैं और दुर्लभ से दुर्लभ जिनागम का अभ्यास करने का मौका हमें मिल रहा है। ये अत्यंत 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 दुर्लभ बात है, तो हमें तो ऐसा स्वयं को भाग्यवान समझना चाहिए कि हमें ये बात भी सुनने को मिल रही है। और ये ऐसा ही है कि किसी पूर्वभव के महान पुण्य का उदय हो रहा है कि ये बात आज हमारे कानों में पड़ रही है। आप तो इतने भाग्यशाली हो कि स्वयं सुनकर निर्णय करके ये दूसरों को भी पढ़ाने वाले। तो हमें सही स्वयं को ज्ञान भी करना है, उसका निर्णय भी सही करना है, तो ये हमारे स्वयं के लिए हमें ये पढ़ना है। तो हमारी भूल हमारी पकड़ में तो आती ही है, हम जब सही ज्ञान करेंगे तो हमारी पहले की विपरीत मान्यता चली जाती है। तो ये हम जिनागम का जो रहस्य है, कौन सा, कारण और कार्य संबंधी जो रहस्य है, उसको हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो जिनागम के जो मूल कर्ता जो है वो सर्वज्ञ भगवान है। अभी पहले वाले क्लास में से कोई यहाँ आए होंगे शायद, सर्वज्ञ वितराग की बात तो वहां भी चली थी। तो ये जो सर्वज्ञ भगवान है जिन्होंने मूल उपदेश दिया है, तीर्थंकरों के द्वारा ये अपने को मूल उपदेश मिला है और वही हमें आज तक उसी के परंपरा के अनुसार हम उसको जान रहे हैं। तो यहाँ मूल में मूल हमें सर्वज्ञ भगवान का सही निर्णय करना चाहिए। हमें अपना निर्णय करना है तो उसके पहले में पहले आवश्यक कंडीशन है सच्चे देव, सच्चे गुरु यानी मुनिराज और सच शास्त्र, इन तीन का सही स्वरूप जानकर वो ऐसे ही है अन्यथा नहीं है, इस तरह से बिल्कुल तत्व निर्णय हुए बिना अपने स्वयं को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। क्या कहा, इनका सही निर्णय होना ही चाहिए, जिसको हमने तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो सम्यक दर्शन ने हमें अपने आत्मा की अपनी स्वयं की पहचान करनी है, स्वयं का अनुभव करना है और वहीं से हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होता है। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो सच्चे देव का स्वरूप निश्चित करना, कहाँ, अपने दिमाग में। सच्चे मुनिराज का स्वरूप निश्चित करना कहाँ पर, यहाँ पर, नहीं तो बाहर जाके थर्मामीटर नहीं लगाना कि ये सच्चा है कि नहीं है, ये हमारी मुनिराज संबंधी की मान्यता क्या सच्ची है या नहीं है, देव संबंधी हमारी मान्यता सही है या नहीं है, शास्त्र संबंधी हमारी मान्यता सच्ची है या नहीं है, ये हमें पहचानना है और हमें वो मान्यता सही करनी है जिनागम के आधार से। तो पहले में पहले हम सिद्धों का अरिहंतों का स्वरूप निश्चित करेंगे। अभी पहले में पहले हमने सिद्धों को नमस्कार किया, ओम नमः सिद्धेभ्य के शास्त्र के शुरू में भी सिद्धों को नमस्कार करके शास्त्र की शुरुआत करते हैं। तो ये सिद्ध में कैसे है सिद्ध भगवान, इसको भी निश्चित करेंगे। तो शास्त्र में आपने वर्णन सुना होगा कि वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित होते हैं। ये भाव कर्म क्या होता है, हाँ आप बोलिए, भाव कर्म क्या होता है, मोह राग और द्वेष को भाव कर्म कहते हैं। और नो कर्म किसे कहते बेटा, नो कर्म, एक कोई उत्तर दे, हाँ आप, शरीर मन वाणी जो आदि है उसको कहेंगे नो कर्म। और कौन सा रह गया? द्रव्य कर्म, वो क्या होते हैं? ज्ञानावरण आदि जो आठ कर्म है उसको कहेंगे द्रव्य कर्म। तो सिद्ध भगवान कैसे है? भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्मों से रहित है। तो हमें जो सिद्ध भगवान का तो स्वरूप हमने देखा था, तो सिद्ध भरे के हम बड़े हैं, इतना टाइम लगता है? सिद्ध बड़े के हम बड़े, सिद्ध बड़े पक्का आप कहेंगे? तभी तो हम उनको नमस्कार करते हैं। जो हमसे कोई श्रेष्ठ है उन्हीं को तो नमस्कार करते हैं ना। यदि वो हम उनसे श्रेष्ठ होते तो हम उन्हें क्यों नमस्कार करते? तो जो हम लौकिक में इससे हम बड़े या ये बहुत बड़े हैं, हमारे समाज के बहुत बड़े हैं, ऐसा जब कहते हैं तो हम उसके लिए क्या अपेक्षा लगाते हैं, कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं? जैसे सिद्ध भगवान के पास कितने कर्म हैं? कर्म कितने हैं सिद्ध भगवान? एक भी नहीं। और आपके पास कितने हैं? 2, 3, 4, 8। हाँ, हम द्रव्य कर्म कितने पूछे? 8 हो है। अच्छा, सिद्धों के पास शरीर तो होगा नहीं है, और आप हमारे पास शरीर है। सिद्धों के कोई बाल बच्चे? अरे हमारे पास तो है। उनके कोई बैंक बैलेंस, घर, कपड़े, कुछ नहीं है? गहने, हीरे माणक कुछ तो होगा। और हम अपने को किस क्राइटेरिया से बड़ा मानते हैं? आपके पास कौन सी कार है? आपके पास कितना बड़ा बंगला है? कितने स्क्वायर फुट का घर है आपके पास? आपके पास कितनी संपत्ति है? हम अपने को बड़ा क्यों मान रहे हैं? कोई शरीर के कारण, कोई धन के कारण, कोई सूक्ष्म ज्ञान के कारण अपने को बड़ा मानते हैं। तो क्या हमने वास्तव में सिद्धों को बड़ा माना कि नहीं माना? कि हम एक दूसरे को किस तरीके से नापते हैं, वही नाप लगाओ सिद्धों को, तो कौन बड़ा हो जाएगा? यानी हम जो अपने को समझ रहे हैं ना, अपने आप को, हम यदि सिद्धों को सही रूप से समझेंगे तो हम अपने को, क्योंकि हम स्वयं जीव है, आत्मा है। अब ये जो संयोग में शरीर है, हमने अभी तक शरीर को ही मैं रूप मान लिया है। हमारी भूल कहाँ हो रही है? मैं कौन हूं इसको मानने में भूल हो रही है। हमने अपने को शरीर रूप मान लिया तो शरीर के कारण हम अपने को बड़ा मानते हैं, और अन्य अन्य संयोगों के कारण अपने को बड़ा मानते हैं। तो हमें तो अरिहंत सिद्धों का स्वरूप निश्चित करना है पहले में पहले। तो मैं आपसे, मेरा प्रश्न है, अरिहंतों और सिद्धों में समानता क्या है? हाँ बोलो। समानता हम दोनों ही देखेंगे, उनमें अंतर क्या है और समानता क्या है, थोड़ा विचार तो करेंगे ना, क्योंकि अभी तो आप थोड़े ऊपर के लेवल में आए हो ना। हाँ बोलो। जो बातें दोनों में समान है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं? हाँ, सर्वज्ञपना दोनों में समान है, सही है। और कोई? वितरागता भी दोनों में समान है। दोनों के अकेले आप बताओ, नहीं समझी मैं। दोनों के, अच्छा, दोनों के घातिया कर्मों का नाश हो रहा है, बहुत सही है। और कुछ? हाँ बोलो। अनंत चतुष्टय क्या होते हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य दोनों के हैं। ये तो कुछ समानताएं देखी हमने, अभी दोनों में क्या असमानता है उसको भी देखेंगे, अंतर क्या क्या है। हाँ बोलो। एक के यानी किसके? हाँ हाँ, अरिहंतों के शरीर है और सिद्धों के शरीर नहीं है, इसलिए उनके नाम में कोई भेद है? बोलो। सुनो। हाँ, अरिहंतों का नाम है सकल, कल यानी शरीर, सकल परमात्मा वो है अरिहंत भगवान, और निकल परमात्मा जिनके शरीर नहीं है उनको सिद्ध परमात्मा कहते। ये जो सकल परमात्मा है अरिहंत भगवान, उनमें भी दो भेद है, मालूम है? सकल परमात्मा जिसको कहते हैं उनके दो भेद किसी को पता है? बोलो। आपने कहा एक सही शंकर परमात्मा और एक सामान्य केवली, उनमें क्या फर्क हुआ? नाम कर्म के कारण भेद हुआ। और कोई भेद मालूम है आपको? नहीं नहीं, वो मैं तीर्थंकर अरिहंत का भेद नहीं, मैं अरिहंत के दो भेद चाहती हूँ, संयोग केवली और अयोग केवली। एक योग सहित है तेरहवा गुणस्थान, और एक योग रहित जो है अरिहंत भगवान वो चौदहवा गुणस्थान। अच्छा, और कोई अंतर उसमें? उनका क्षेत्र कहाँ है, सिद्धों का कहाँ है और अरिहंतों का कहाँ है? हाँ, अरिहंत संसारी है और सिद्ध मुक्त है, वो क्षेत्र थोड़ा ही हुआ, वो उसका भाव हो गया। सिद्ध कहाँ रहते हैं? सिद्ध लोक के अग्रभाग तो एक राजू भाई सात राजू है लंबा चौड़ा। क्या पूरे में रहते हैं सिद्ध भगवान? 45 लाख। कौन से एक कोने वाली? बीचों बीच जो सिद्ध शिला के, सिद्ध शिला में ही रहते हो ना सिद्ध भगवान? कहाँ रहते हैं? सिद्ध शिला में रहते कि नहीं रहते? रहते। आप क्या कहते हैं? कितना ऊपर रहते? सिद्ध शिला के ऊपर क्या क्या है? हाँ, तीन वात वाले, तो उसमें कहाँ भगवान कहाँ विराजमान? अंतिम वात वाले के बिल्कुल ऊपर की, उनके सबके जो सिर के प्रदेश है वो वहां चिपकी। जैसे हम जमीन पर चलते, सबके पैर तो एक लेवल पे, और जो ऊंचा है वो जो कोई ठींगना है तो उसके सिर अलग अलग लेवल पर है ना, उनका क्या होता है? सिर एक लेवल पर, पैर अलग अलग हो गए, कोई बैठा है कोई पद्मासन में कोई खड़गासन में। तो ये सिद्ध शिला कहाँ पर है? किसमें किसमें रहती हो सिद्ध शिला? शिला तो एक पत्थर है। ये ईशत प्रागभार नाम सुना है? किसका है? आठवीं पृथ्वी जो है ना, सात पृथ्वियां तो यहां है मध्यलोक की, एक पृथ्वी उसके नीचे नीचे नीचे, ये सात पृथ्वियां है, और आठवीं पृथ्वी जो है वो ऊपर सिद्ध शिला इसके सेंटर में है, वो आठवीं पृथ्वी ऊपर है, और उस सिद्ध शिला के भी ऊपर अंतिम वात वाले में सिद्ध भगवान विराजमान है, और अरिहंत भगवान पूरे मध्यलोक में ढाई द्वीप। देखो, अरिहंत तो यहां है और सिद्ध भगवान यही बनते हैं। जहां अरिहंत भगवान विराजमान है, सिद्ध दशा वहीं पर प्राप्त होती है, अरिहंतों के ही सिद्ध दशा प्राप्त होती है, और एक समय में ऊर्ध्व गमन स्वभाव प्रकट होकर वो सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव की याद आई है तो बहुत से लोग ऐसा भी समझते हैं कि मरण के बाद जो विग्रह गति होती है, सुना है विग्रह गति नाम किसको कहते हैं? जो परभव में गमन होता है, कहीं बिना मोड़ के भी होता है, मोड़ के भी होता है, तो पहले ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, इसे मैंने कहीं कहीं सुना है, क्योंकि हम बहुत से गाँव में जाते हैं तो बहुत लोगों ने ऐसा सुन के रखा, ऐसा हमको बताते। परंतु तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव तो अरिहंत दशा के बाद जब आठों कर्मों से रहित होते तभी वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है। विग्रह गति में कोई ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण पहले थोड़ा ऊपर जाता है और बाद में नीचे आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना? ऐसा यदि आपने भी सुनकर रखा हो तो निकाल देना मन से, क्योंकि आप तो विद्वान बनकर बाहर जाने वाले हैं और उनको सिखाने वाले, तो गलत बात हमारे से नहीं फैले, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमने तो अरिहंत और सिद्धों को तो यहाँ देखा, उसमें क्या क्या भेद है। देखो, हम सबसे पहले हमें जिनागम का अभ्यास करना है तो सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप निश्चित करना ही है, क्योंकि हमारी मान्यता में वहीं से भूलें शुरू होती है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो जो मूर्ता चलती है ना, नाम सुना है मूर्ताओं का? तीन मूर्ता है, कौन कौन सी है? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, हाँ लोक मूर्ता, यानी उसके बारे में अपनी मूर्ता। देवों में कोई मूर्ता नहीं है, गुरु में कोई मूर्ता नहीं है, और शास्त्र में या लोक में कोई मूर्ता, उसके संबंध में अपनी जो मान्यता में भूल चल रही है उसको कहेंगे ये मूर्ता। तो ये जो तीन मूर्ता से रहित सम्यक दर्शन होता है, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो पहले में पहले ये तीन मूर्ता से रहित हम है कि नहीं उसका हमें अंदाजा लेना पड़े। तो भगवान का स्वरूप पहले में पहले निश्चित करना है, क्योंकि जो सिद्धों का स्वरूप है वो मेरा स्वभाव है। क्या कहा? सिद्धों का जो स्वभाव है और जो उन्होंने पर्याय में प्रकट किया है, उनकी जैसा उनका जैसा स्वभाव है वैसा उनके पर्याय में प्रकट हुआ है, तो उनका स्वभाव और उनकी पर्याय समान है। और उनका जैसा स्वभाव है वैसा मेरा स्वभाव है। हम सिद्धों के और अरिहंतों के दर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे घर के माँ बाप करते आए, इसलिए करते हैं। क्यों करना? सबसे पहले उठकर हम क्या कहते हैं? पहले किसका दर्शन लेते हैं? हम तो दर्पण का दर्शन लेते हैं। नहीं समझे? पहले में पहले आईने में जाके मुंह देखते हैं। तो आईना क्या दिखाता है? अपना मुंह, जिसने हमने अपना समझ रखा है। क्यों? तो मुंह में दाग यहां दिखाई दिया तो क्या करते हैं? आईना पोछते हैं ना। आप क्या करते हैं? मुंह पोछेंगे। वैसे ही जो आदर्श है, सिद्ध भगवान के आदर्श, दर्पण का एक नाम है आदर्श। तो सिद्ध भगवान को हम देखते तो ये हमें अपना रूप दिखाई देता है। कैसा? दर्पण में देखते हैं तो कुछ काला भी दिखाई देता है तो हम पोछ लेते हैं। तो सिद्ध भगवान भी हमें अपना रूप दिखाते हैं, तो जैसा स्वभाव है वैसा तो यहां पर्याय नहीं दिख रही है, कुछ अलग दिख रही है ना। रागी द्वेषी विकारी पर्याय है तो हम कहां ठीक ठाक करना है? भगवान को अंगुलन करने से होगा ना। तो ये यहां जो कोई हमारे विकार है, यहां जो स्वभाव जैसा हमारे पर्याय में प्रकट नहीं है, तो हमें उसका विचार चाहिए। पर्याय यानी कार्य, ये जो हम कारण कार्य रहस्य देखने जा रहे हैं, हमें तो पर्याय यानी गुणों का तो स्वरूप समझना ही है। और ये जो हम कार्य चाहते हैं, सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष रूपी कार्य चाहते हैं, तो हर जो कार्य हो रहा है कहाँ हो रहा है, कौन से द्रव्य में हो रहा है, कितने समय तक रहता है और उसका कारण और कार्य का क्या संबंध है, वो कौन करता है कौन नहीं करता है, उसका कहाँ सद्भाव है कहाँ अभाव, ये सारी चर्चा यहाँ चलेगी। क्योंकि हमारी आज तक जो भूल हो रही, हम कार्य तो चाहते हैं परंतु कारण का अता पता नहीं है। जहाँ कार्य होता है वहाँ कोई ना कोई कारण तो होता ही है, तो क्या हमें कारण को ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, कौन हमें प्राप्त करा देगा, इस सब का हम विचार करेंगे। इसके लिए ही यहाँ पर शुरू में शुरू हमने सिद्ध भगवान का स्वरूप देखना शुरू किया था। देखो पहले प्रकरण में हम यहाँ जो पहले तो साधारण बातें हैं और जहाँ सर्वज्ञ की बात शुरू होती है वहां से हम देखेंगे। पृष्ठ संख्या 7 निकालिया। देखो 5 पृष्ठ निकालने। पहला नीचे का पैराग्राफ है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तत्वज्ञान, देखो अन्य भी बातें हैं जो आप स्वयं पढ़ना है। इसको जब हम रोज यहां सीखेंगे, कुछ बातें तो जनरल होती है, उसको लेते हुए हम उसके जो महत्व के बिंदु है उनको हम ख्याल करने, बाकी तो आप जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ लेते हैं सामान्य से, वो पढ़ते पढ़ते आना आप रोज एक एक चैप्टर, तो हम और जल्दी से आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि यहाँ तो ये तो बिल्कुल सादी भाषा में लिखे हुए पत्र रूप है, जैसे आपके साथ कोई संवाद कर रहा है, उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ देखेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तत्वज्ञान के अध्ययन से कुछ उपलब्धि होती नहीं दिखाई देती, सम्यक दर्शन नहीं होता, तत्वों का आकलन नहीं होता, इस कारण संभ्रम में पड़ते हैं। ये सारा पढ़ने से क्या फायदा? आपको भी कोई मिलने होते होगी ना, ये पढ़ने से क्या फायदा, आप यहाँ इसमें क्यों एडमिशन लिए? कोई आप साइंस की शाखा में चले जाते, कोई डॉक्टर हो जाते, इंजीनियर हो जाते तो पैसा कमाते, इसमें आने से क्या फायदा? ऐसे मिले होगे कि नहीं मिले होगे? हमको तो मिलते हैं ऐसे। हाँ, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं यह पढ़कर कितने जीव सम्यक दृष्टि हुए हैं, अहो ज्ञानी जीवन से ही देशना की प्राप्ति कार्यकारी होती है, अहो हमें सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन करना है। तो वो ऐसा नहीं समझते कि मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है। बाहर में कोई सम्यक दृष्टि को देखना चाहता है, बाहर में कोई अन्य अन्य उपलब्धि चाहता है, परंतु मैं स्वयं आत्मा हूं और मुझे अपने को समझना है, ये बात भूल जाते हैं। बाकी ये समय सार 18वीं गाथी तो आपने पढ़ी है कि यह भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है। आपने सुना है ना, गाथा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हाँ, ये सुना है आपने? नहीं सुना हो तो अभी सुनो। क्या कहा है कुंकुंदाचार्य ने? ये भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है। आप कहेंगे हमें तो नहीं अनुभव आ रहा है, और आप कहेंगे हम आबाल गोपाल में नहीं क्या? परंतु क्या भूल कहां हो रहे? अनुभव में, ज्ञान में तो आ रहा है। क्यों? ज्ञान तो स्वपर प्रकाश है, प्रकाशक है, परंतु यही मैं हूं ऐसा उसको भाषित नहीं हो रहा। भूल कहां पर है? मैं कौन हूं इसका निर्णय में। उसका ये पंखा घूम रहा है, दिखाई दे रहा है? ये माइक दिखाई दे रहा है आपको? ये पेन दिखाई दे रही है? ये कुछ लाइट यहां प्रकाश ऑन कर दिया, अभी तो लाइट जल रही है, दिखाई दे रही है? ये सब दिखाई दे रहा है किसको? यानी ये है, ये 100% हमको पता है, 100% उसको हम स्वीकार करते हैं। आत्मा है क्या पता, शास्त्र में लिखा है तो होगा। क्यों भाई? शास्त्र में लिखा है तो होगा ऐसा है, पर ये जो देख रहा है, जान रहा है, वो कौन जान रहा है? किसकी सत्ता में ये ज्ञान हो रहा है? अरिहंत भगवान की सत्ता में हो रहा है कि मेरी सत्ता में? मुझे जो ज्ञान हो रहा है वो कहां हो रहा है? हाँ, आपको जो ज्ञान हो रहा है वो किसकी सत्ता में हो रहा है? हाँ, तो ये अपने को सिद्ध करता है ना, यही तो आत्मा है जो जानने का कार्य कर। ये ऐसा ज्ञान हमें तो पर पदार्थ है बिल्कुल 100% उसकी खातरी है, परंतु मैं हूं नहीं, होऊंगा और होऊंगा तो कौन है? ये शरीर, यही मैं हूं। भूल कहां हो रही है हमारी? मैं को जानने में भूल हो रही है, वही हम देखेंगे अभी। क्योंकि हमें जो सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करना है, जब हम सिद्धों का स्वरूप निश्चित करते हैं तो बिल्कुल मैं स्वभाव से मैं भी ऐसा हूं। हमें अपना स्वभाव निश्चित करना है, हमें स्वभाव को जानना है, तो पहले आगम के द्वारा सही हमें ज्ञान करना है। क्या कहा? अपने को जानना सम्यक दर्शन का तरीका बहुत आसान है, सरल है। आज तक कितने जीव मोक्ष चले गए हैं, सिद्ध भगवान कितने हुए आपको पता है? सिद्धों की संख्या कितनी है? अनंत है। जो सिद्ध अभी हुए हैं वो पहले मिथ्या दृष्टि थे कि पहले अनादि से सिद्ध ही है वो? हर एक जो जीव सिद्ध बना है वो पहले मिथ्या दृष्टि था। तो अनंत जीवों ने मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्राप्त करके सिद्ध दशा प्राप्त की है। जो अनंत जीव प्राप्त करते हैं वो आसान है, सरल है क्या? बहुत डिफिकल्ट है? बिल्कुल सरल है। जो स्वयं की चीज है, जहां कोई पराधीनता नहीं है, वो बिल्कुल सहज सिद्ध है। तो ये हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें अपना ही स्वरूप निश्चित करना है पहले में। इसके लिए हमें जैन दर्शन का अभ्यास करना है, हमें किसी को सिखाने के लिए नहीं सीखना। हाँ, जो सीखता है उसको सहज भाव होता है कि मैं औरों को भी सिखाऊं, क्योंकि मुनिराजों को भी भाव होता है ना, मुनिराजों ने इन ग्रंथों की रचना की है तो टाइम पास करने के लिए की होगी ना, कि टाइम नहीं जाता है अभी क्या करे, दीक्षा ली है अभी लिख के रखे। क्यों? ये तो सहज भाव होता है कि जिसको सही मार्ग और ऐसा अलौकिक मार्ग मिल गया है, उसको ऐसा लगता है सब जीव इसको जाने। तो इन्होंने ये जो रचना की है, हम भी जो अरिहंतों को सिद्धों को पहले में पहले निश्चित करने जा रहे हैं, वो अपना स्वभाव निश्चित करने के लिए जा रहे हैं। तो यहां लिखते हैं, नीचे के दूसरा पैराग्राफ, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का स्वरूप जानकर इन मूर्ताओं से अपना बचाव करना आवश्यक है। किसका बचाव करना है? अपना। देखो, हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले में बोले ट्रिपल है, पोलियो है और क्या क्या नहीं, मीजल्स है, सब देते, पता है ना आपको, सब इंजेक्शन्स लगाते, क्यों? ये बीमारी न हो जाए इसलिए। ऐसे यहाँ भी हमें शास्त्रों का अभ्यास करके हमें इन बीमारियों से बचना है। ये तीन मूर्ता है, छह अनायतन है, सुने नाम अनायतों के क्या होते हैं? हाँ आप बोलिए, एक भाई हाँ बोलो, अनायतन क्या होते हैं? ये छह अनायतन कौन बताना चाहते? हाँ जोर से बोलो, कौन बताना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताना मुझे। हाँ बोलो, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये तीन और उनके सेवक, इनको अनायतन कहे। आयतन का अर्थ क्या होता है और अनायतन क्या होता है? आयतन यानी स्थान और ये अनायतन यानी अस्थान है, इनको टालना योग्य है। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म तथा इनके सेवक, इनको टालना। किसके लिए ये बातें बताइए? समय दृष्टि के लिए, ख्याल में आता है? क्यों टालना? क्योंकि हमें सही निर्णय करना है ना। जिसको सही निर्णय हो जाता है, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय होता है, तो क्या उनको एक कुदेव आदि के प्रति विनय बुद्धि, आदर बुद्धि रहेगी? ये बात नहीं कि द्वेष करने लग जाओ। देखो उनसे नमस्कार नहीं करना तो हम क्या करने लगते? द्वेष कर, द्वेष कहाँ करना है? ना द्वेष करना है ना राग ही करना है। लोग जो कहते हैं ना सर्वधर्म समभाव, जो विनय मिथ्यात्व है उसको क्या नाम देते हैं? सर्वधर्म समभाव, यानी सर्वधर्मों के प्रति राग करो। ये समभाव कहाँ हुआ? समभाव तो राग द्वेष रहित पने को कहते हैं। और यहाँ तो सबके सामने जाओ, माथा टेको, कोई तो भगवान मिलेगा जो हमारी बिगड़ी बना देगा। इतने भगवानों का सहारा क्यों लेते हैं लोग? हम लौकिक में भी देखते हैं ना कि इसको नमस्कार करो, उसको नमस्कार करो, उसको नमस्कार करो। ऐसे भी हमें महाभाग मिलते हैं क्या? अरे समाज में रहना है तो हम जाते हैं, मित्र ने किसी ने बुलाया है, कोई हमारे पड़ोसी ने बुलाया है तो जाते हैं और हम नमस्कार करते हैं और मन में क्या कहते हैं? नमोकार मंत्र गिनते। क्यों ऐसा करना अच्छा है कि नहीं? क्यों नहीं? आपको पूछेंगे समाज में, आप जाओगे प्रवचन में तो ऐसा पूछने वाले मिलेंगे आपको, तो क्या आप जवाब देंगे? आप सही नहीं, क्यों बोलो भाई, सही क्यों नहीं? उसने तो अरिहंतों को नमस्कार किया ना, उसके आंखों के सामने तो अरिहंत भगवान थे, तो उसमें क्या दोष है बोलो? नहीं कह पाओगे कोई? ये सही है कि नहीं? इतना तो लौकिक नहीं सर, निश्चय से भी और लौकिक से भी। हाँ? अरे कोई अन्यमति के देव है और उसके नमस्कार, देव की बात चल रही है हमारी, पड़ोसी के थोड़ी हम अरिहंतों का नाम लेके पड़ोसी की थोड़ी नमस्कार करेंगे, हम कुदेव की बात कर रहे हैं। हाँ। हाँ तो उन्होंने कहा हमको वो सही समझता है कि नहीं समझता? हमको भी देखो, कितने 1984 में पूना में हमको बुलाया था प्रवचन के लिए, और पूरी भरी सभा में इसे भी बहुत बड़ा मंदिर था, और वहाँ पूछा कि हम तो ऐसा, वहाँ तो ये बहुत चलता है गणपति वगैरह का, गणेश जी का चलता है, हम तो जाते हैं, हम जाना पड़ता है, क्या करें, परंतु हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते, अरिहंतों का नाम लेते हैं। एक भाई ने पूछा मुझसे तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो हमने बोला, मैं आपसे पूछती हूं कि आप और आपकी पत्नी कहीं घूमने जाने का आपका विचार था, घर गए और पत्नी को बोला कि चलो जल्दी जाना है हमें, तो पत्नी बोले नहीं मुझे इतने काम पड़े हैं, अभी आप चले जाइए, मैं तो देखूंगी अभी आज आऊंगी या नहीं भी आऊंगी। तो आप चले गए चौपाटी में, पुणे में तो था वो, शिवाजी पार्क में कहीं वो घूमने चले गए। थोड़ी देर में पत्नी का भी काम जल्दी निपट गया, वो भी चली आई आपके पीछे पीछे। तो उसने क्या देखा कि आप यानी मेरा पति उसका पति दूसरे किसी स्त्री के हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है। बहुत गुस्सा हो गई, आग बबूला हो गई, और घर जाने के बाद झगड़ा हुआ। तो पतिराज ने कहा, मैं तो मन ही मन में ऐसा ही सोच रहा था, यही मैं तू ही है मेरे साथ, क्या आपको ये मंजूर है कि नहीं है? या उल्टा ले लो कि पति घर में था और पत्नी चली गई, तो ये पतिराज को ये मंजूर है कि नहीं है? क्योंकि उसने मन में तो आपका ही नाम लिया था, तो वहां तो लौकिक में तो कोई मंजूर नहीं करेगा। और ये जहां भगवान की बात आती है, और वहां आप किसको फंसाना चाहते हैं, अपने आप को या मित्र को या भगवान को? ख्याल में ना, तो बिल्कुल निर्णय भी सही होना चाहिए। और डर कैसा है, वो मित्र तो समझ जाएगा एक आध दो कि ये नहीं नमस्कार करता है या नहीं बुलाएगा, और क्या होगा? परंतु किसी भय से, आशा से, स्नेह से, किसी लोभ से, मेरा कुछ नाम हो जाए, ये लोग मुझे क्या कहेंगे, किसी भी प्रेशर से कुदेव आदि को नमस्कार करना, उनकी विनय करना, उनके प्रति आदर बुद्धि रखना, ये तो मिथ्यात्व है। और बिल्कुल हम इतना दृढ़ता चाहिए उसके बारे में कि कुछ भी हो जाए उसके लिए। कोई आपको तो हाथ से पकड़ कर तो नमस्कार नहीं करवा रहा ना वहां पर, तो इसका निर्णय हमें होना ही चाहिए। इतनी दृढ़ता तो पहले में पहले निशंक होकर चाहिए। कोई ऐसा भी कहता हमारे घर के बाजू में कोई मंदिर नहीं है, हमें 10 मील जाना पड़ता है, तो ये दूसरे मंदिर में जाके चलेगा नमस्कार करके? व्यापार के लिए कितने माइल जाते हो, वो तो 40 माइल जाता है, और जिन मंदिर में जाने के लिए, अरे वो तो आधा माइल दूर है, क्या करे? यानी हमारी रुचि कहाँ पड़ी है, ये उसका दिग्दर्शक है। देखो ये अन्य भी जो यह मूर्ताएं जो है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ से अपना विषय चलता है, 8 पेज मैंने बताया था आपको निकालना है। चौथी लाइन देखो, मुनिराज जो है उनकी क्या पूर्ण वितरागता है या नहीं है? मुनिराजों की वितरागता कितनी है? हाँ, एक देश है, कितने कषाय चोपड़ी का अभाव हुआ है? 3 कषाय चोपड़ी का, कौन से? अप्रत्याख्यानावरण, सॉरी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन अभी है। तो मुनिराज पूर्ण वितराग नहीं है, फिर भी उनके परिग्रह कितना है? बिल्कुल नहीं, वे भी निष्परिग्रही है। ना उनके वस्त्र है, ना अलंकार है, ना कोई फूल माला आदि पहनते हैं, ना चंदन आदि लेप लगाते हैं, ना कोई अस्त्र शस्त्र वस्त्र रखा है उन्होंने, मुनिराजों को भी नहीं है। तो पूर्ण वितरागी ऐसे भगवान को होगा कि नहीं होगा? क्या कहा, मुनिराजों को भी जहां परिग्रह नहीं है, जो 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती है, उनके भी परिग्रह नहीं है, और भगवान को परिग्रह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, हमको तो निर्णय करना है ना। अन्य मतियों की जो मान्यता है, हमारे जो अन्य समाज में जो हम जहां घूमते हैं, वहां अन्य मतियों के संस्कार हमारे ऊपर चढ़ते चले जाते, परंतु हमें बिल्कुल निश्चित करना है भगवान का स्वरूप पहले में पहले। देखो मुनिराजों को एक देश वितरागता है, उनके भी कोई परिग्रह यानी क्या? वस्त्र, अलंकार, पुष्प, माला, श्रृंगार, चंदनादि का लेप, पात्र, पात्र यानी बर्तन, नौकर, स्त्री, शस्त्र, अस्त्र, ये शस्त्र और अस्त्र में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? शस्त्र क्या है, फेंक के मारते वो क्या है? अस्त्र है क्या? शस्त्र है, अस्त्र है हाँ, और शस्त्र हाथ में जो लेके डराएगी। धन धान्य, गाड़ी, वाहन, घर परिवार, कायम का निवास स्थान किसके? मुनिराज के नहीं होता। क्यों नहीं होता कायम का निवास स्थान? हाँ, वो तो उनका तो चौमासा छोड़कर अन्यत्र तो हमेशा ही विहार होता रहता है, कोई उनका एक कायम का ठिकाना मुनिराजों का नहीं हो सकता। अरिहंतों के तो पूर्ण वितरागता है, जो मुनिराजों को नहीं है बातें वो अरिहंतों को हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, हमको निर्णय करना। लोगों का जो है ना, भगवान को मालाएं डालेंगे और कुछ जो कुछ करेंगे, वस्त्र पहनाएंगे और जो कुछ है मुकुट रखेंगे, अन्यमतियों की बातें देखते हैं हम, तो ये तो भगवान का स्वरूप तो है ही नहीं है। दूसरे स्त्री पर्याय में मुक्ति होना मानने वाले भी है हमारे कोई भाई बहन, तो स्त्री पर्याय का जो जीव है, द्रव्य स्त्री की बात चले, पांचवें गुणस्थान तक का उसका पुरुषार्थ हो सकता है, उसके ऊपर जा नहीं सकता। तो कोई अन्यमति मानते हैं कि मल्लिनाथ तीर्थंकर को स्त्री बना दिया उन्होंने? हाँ, मल्लीबाई। तो ये मुक्ति होना सर्वथा गलत है उसको। हम तो मल्लिनाथ तीर्थंकर यहाँ के भरत क्षेत्र के तीर्थंकर थे, तो कब से सम्यक दृष्टि थे, यानी जब यहाँ आए तो गर्भ कल्याणक हुआ था कि नहीं हुआ था? पांचों कल्याणक हुए थे, तो जिनका गर्भ कल्याणक होता है तो वो सम्यक दृष्टि होगी कि मिथ्या दृष्टि होगी? जो सम्यक्त्व के साथ जन्मा है उसके भाव से भी और द्रव्य से भी पुरुष ही होता है, बराबर। वो कहाँ से चयकर आए थे मल्लिनाथ तीर्थंकर जो आए थे? कौन से विमान से आए थे? अपराजित से आए थे। अपराजित कहाँ होता है मालूम है? ये पांच अनुत्तर है ना ऊपर के, उसमें एक है अपराजित। तो वहां तो कोई स्त्रियां होती ही नहीं है, ग्रैवेक और ऊपर सभी देवों में स्त्रियां कोई होती नहीं, वहां तो सभी पुरुष ही होते, और वहां तो समय दृष्टि है, अपराजित में तो सभी समय दृष्टि है, तो वहां भी पुरुष थे द्रव्य से भी और भाव से भी। अपराजित में जाने वाले कौन होते हैं? भावलिंगी संत ही वहां जाते हैं। तो भावलिंगी संत कौन हो गए? पुरुष हो गए कस्य? तो तीन तीन भौतक तो हम सिद्ध कर चुके, अभी उसके भी पहले पुरुष हो गए तो हो गए। तो हम तो इस तरह से करणानियोग के माध्यम से भी उनके पुरुष है ये सिद्ध कर सकते। तो ये कोई ऐसी मान्यताएं होती है तो ये तो त्रिवार असत्य बातें हैं जो स्त्री को मुक्ति मानते हैं। दूसरी बात, अरिहंतों को कोई उपसर्ग नहीं होता। ऐसे भी आपने सुने होंगे कि अरिहंत भगवान थे, वो समोशरण में बैठे थे, उनको पैचिस वो कोई रोग हो गया, फिर डायरिया हो गया, उनके कोई कौलाहार मानते हैं, क्या क्या मानते हैं। अरे जिन तीर्थंकरों को जन्म से ही आहार तो होता है परंतु निहार नहीं होता, सुना होगा ना, उनके मलमूत्र नहीं होते हैं, और वो तीर्थंकर की अवस्था में पहुंच जाए और उनको डायरिया हो जाए, पैचिस लग जाए, ये बात कैसी हो सकती है? ख्याल में ना, सामान्य अरिहंतों को भी, तीर्थंकरों की बात छोड़ दो, सामान्य अरिहंतों को भी केवल ज्ञान का ही तो अतिशय होती, उसके कोई केवल ज्ञान होने पर किसी को उपसर्ग नहीं हो सकता, और ये ऐसे सर्वज्ञ के बारे में मानते हैं। ये नहीं कहां कितनी भ्रमणा है और हमें बिल्कुल उसका सही निर्णय है कि नहीं, ये हमें देखना है। हमें अन्य मतियों का निराकरण क्यों करना है? देखो शास्त्र में भी बहुत बात है, ये सांख्य मति का मान्यता है, ये बौद्ध मति की मान्यता है, हमें उन्हें जाकर नहीं समझना है। जैन होकर भी सांख्य मति या वैशेषिक या जैमिनिक या जो कोई श्वेतांबर जैसी मान्यता हो हमारी तो वो निकल जाए, क्योंकि कुंदकुंद के सामने कोई बौद्ध आके तो बैठे नहीं थे सीखने के लिए, उनके शिष्यों में वैसी मान्यता वाले अगर कोई होते हैं तो उनको समझाने के लिए उन्होंने ये अन्य मतियों का निराकरण किया। देखो अरिहंतों को इसी आठ पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, तीसरे चौथे चौथा पैराग्राफ तीसरा। अरिहंतों को कोई उपसर्ग भी नहीं होता, पूर्व में मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ हो तो वह भी बारहवें के अंत तक ही रहता है, अरहंत अवस्था में नहीं। उनके रोग भी नहीं होता, उनके परम औदारिक शरीर होता है और अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। क्या हमने इन दोषों को दोष माना है? 18 दोष कौन से नहीं होते मालूम है? हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, बैठिए। तो क्या हमने इन दोषों को दोष रूप स्वीकार किया है कि नहीं किया? देखो किसी को नींद नहीं आती है, ये डॉक्टरों के पास किसकी लाइन जाती है मालूम है? कौन कौन लोग जाते हैं? जिसको भूख नहीं लगती है, जिसको नींद नहीं आती है। क्यों? तो हमें नींद नहीं आती है, अच्छा समझते हैं कि बुरा समझते हैं? हमें भूख नहीं लगती, बच्चों को भूख नहीं लगती तो माएं पहले में पहले माताएं सब डॉक्टर के पीछे भागते हैं, अरे हमारा बच्चा भूख नहीं लगती, उसको खाना नहीं खाता। तो हमने ये दोषों को माना है क्या कि उसको गुण माना है? ये डॉक्टर के पास जाना कि नहीं ना जाना ये बात नहीं है, पर हमारी मान्यता में हमने इसको क्या माना है? उनके तो निद्रा नहीं है, क्यों नहीं है? अरिहंत भगवान को निद्रा क्यों नहीं आती? हमें क्यों आती है? वो खाना नहीं खाते इसलिए, और हम खाना खाते इसलिए नींद आती है? हाँ बहुत अच्छा। दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया, कौन से दर्शनावरण का? सभी दर्शनावरण का हुआ है, परंतु उसमें वो निद्रा नाम की जो पांच निद्राएं हैं तो उनका क्षय हो चुका है, तो उनके तो ये निद्रा नाम का दोष है ही नहीं है। ध्यान में आती है ना बातें? यहां भी ये सारे नाम लिखे पुस्तक में। हमने ये भी देखा है, देखो ये तो बातें आपने सारी कुदेवादीन की बात देखी है। यहाँ आते हैं नौवे पृष्ठ पर। देखो अरिहंत भगवान के जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं और उनके चार घातिया कर्मों का नाश हुआ है, तो ज्ञानावरण के नाश से उनके अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है, जिसको हम केवल ज्ञान कहें, क्षायिक ज्ञान कहें। केवल ज्ञान को ही दूसरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया ना, क्षायिक ज्ञान, अनंत ज्ञान। तो ज्ञानावरण के क्षय से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से क्षायिक दर्शन कहो, केवल दर्शन कहो, मोहनी के क्षय से अनंत सुख कहो या क्षायिक दर्शन क्षायिक चारित्र कहो, और फिर अंतराय के क्षय से अकेला अनंत वीर्य। हाँ नव केवल लब्धि का नाम ले लो ना, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये पांचों ही। तो अरिहंत भगवान के जो नव क्षायिक लब्धि प्राप्त हुई, कौन सी बोलो, कौन से नव क्षायिक भाव प्रकट हुए अरिहंतों के? अभी मैंने बताए थे। हाँ बोलो। देखो हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय देखी ना, उसके प्रतिपक्षों को बताना है आपको। ज्ञानावरण के अगेंस्ट हमको ज्ञान लेना है, दर्शनावरण के अगेंस्ट हमको दर्शन लेना है, मोहनी के वहां तो श्रद्धा और चारित्र दोनों को लेना है क्षायिक रूप से, और फिर अंतराय के विरुद्ध हमको ये पांच गुण उसके क्षायिक भाव प्रकट हुआ है। ये अरिहंतों का स्वरूप है। सिद्धों के तो आठों ही कर्म का नाश हुआ है, उनके तो आठ गुण कहते हैं, अरिहंतों के तो चार बताए, मूल तो चार है ना, वैसे बाकी जो उनके जो अरिहंतों के गुण बताए हैं वो तो उनके केवल ज्ञान के अतिशय है, जन्म के अतिशय, जो तीर्थंकरों की अपेक्षा है, देवकृत अतिशय है, परंतु वहां तो चार बताए और सिद्धों के आठ। इसको कहते उपलक्षण, ये शब्द सुना है? उपलक्षण है ने उदाहरण के तौर पर यह बताए, परंतु सच में कितने हैं तो अनंत गुण उनके शुद्ध हुए हैं, अनंत गुणों का पूर्ण स्वभाव परिणमन हुआ। नवलब्धि तो सिद्धों के है ही है, जो अरिहंत को प्रकट हुआ है वो सिद्धों में थोड़ा ही चला जाने वाला है, वो तो है ही। देखो नौवे पृष्ठ में यही देखते हैं, नीचे आठवें पृष्ठ के नीचे का पैराग्राफ। तुम जानती ही हो कि अरिहंतों के चार घातिया कर्मों का पूर्णतः क्षय हुआ है, पूर्णतः क्षय। देखो ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है तो पांच ज्ञानावरण में से कौन से ज्ञानावरण का क्षय होता है तब केवल ज्ञान प्रकट होता है। पांच ज्ञानावरण है ना, कौन से पांच? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, केवल ज्ञान। इनमें से कौन से ज्ञानावरण का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है? केवल ज्ञानावरण। तो केवल ज्ञानावरण का क्षय हो जाए और बाकी रहे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, चार पहले हो जाते हैं। अच्छा, कौन से गुणस्थान में? देखो बारहवें गुणस्थान में क्या है पोजीशन? बारहवें गुणस्थान तक के ज्ञान को क्या कहते हैं? हाँ, क्षोभशम ज्ञान। तो अगर उनका क्षय हो जाता तो क्या होता वहां पर, है ना? ये सारे जो चार ज्ञानावरण है उनका क्षोभशम चल रहा है और केवल ज्ञानावरण का तो उदय चल रहा है। तो जब बारहवें गुणस्थान का अंत समय तक तो पांचों ही ज्ञानावरण है और उनका एक साथ क्षय हो जाता है, ख्याल में आई बात? सभी पांचों ही जितने ज्ञानावरण है सबका क्षय हुए बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। देखो केवल ज्ञानावरण के उदय में कौन कौन सा ज्ञान रुकता है? अभी मैं उल्टा पूछ रही हूं। क्षय होने से तो मैंने बोला पांचों ही ज्ञानावरण का क्षय होगा तब केवल ज्ञान होगा। मैं अभी उल्टा पूछ रही हूं, केवल ज्ञानावरण का उदय है तो कौन कौन सा ज्ञान नहीं होता है? यानी केवल ज्ञानावरण मात्र केवल ज्ञान को ही रोकता है। अभी हम निमित्त की भाषा में बोलते हैं, कोई किसी को रोकता बिकता नहीं है। क्या कहा? केवल ज्ञानावरण का उदय है तो मति श्रुत अवधि मनपर्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ, केवल ज्ञानावरण का उदय आप सबको, हमको, आपको सबको है तो मति श्रुत ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी अवधि ज्ञान है कि नहीं वो अपना अपना जाने। तो केवल ज्ञानावरण का उदय अन्य ज्ञानों को नहीं रोकता है, परंतु ऐसा नहीं कि मात्र केवल ज्ञानावरण का क्षय हो गया और बाकी रह गए और इसलिए केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं होता। पांचों ही ज्ञानावरण का एक साथ क्षय हो जाएगा बारहवें के अंत में और तेरहवें गुणस्थान में क्षायिक ज्ञान प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। कुछ समझ में आती बात? नहीं आती? थोड़ा सुन तो लो, जब इस सुनने से तो उस पर हम विचार भी करेंगे, थोड़ी बहुत थोड़ी बातें ख्याल में आ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, पहली बार सुनते हैं ना कुछ नहीं समझ में आता। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अपने समझ में नहीं आवे ऐसी भी बातें हम सुन लेते हैं। हम भी जब प्रवचन इस लाइन में आए तो कभी कांजी स्वामी को सुनते तो वो क्या कहते थे कुछ नहीं समझ में आता था, आ हा 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 समझाणो पाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं समझते थे। फिर भी कुछ समझ लिख, वो तो गुजराती में बोलते थे और हम उसमें हिंदी में गुजराती भाषा में जो कुछ वैसा लिख लेते थे। कभी कभी बहुत से बड़े बड़े पंडितों को सुनते थे कुछ नहीं समझ में आता था फिर भी कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। और कभी कभी हमारे समझ में आवे ऐसी भी बातें हम सुनते थे, मगर कालांतर से अपना अभ्यास बढ़ जाता है तो वो क्या कहना चाहते थे वो बाद में अपने को क्लिक हो जाती। कभी कभी ऐसा नहीं करना कि हमें समझ में ही नहीं आता, हम समझेंगे नहीं, हम छोड़ ही देंगे, ख्याल में आती है ना बातें? बिल्कुल समझना, सोचना, उस पर विचार करना। कोई बातें नहीं भी समझ में आए तो पूछना जरूर। यहां भी हमने आज जो कोई बातें बताई उसमें से आपको कुछ नहीं समझ में आवे ऐसी भी बातें हो सकती है। कभी कभी हम करनानियों की भी बातें बीच में बताएंगे आपको, तो नहीं भी समझ में आए तो जरूर पूछ लेना। अभी तो हम यहीं रुकते हैं, सर्वज्ञ की सिद्धि के बारे में हम कल पढ़ेंगे, आप भी पढ़ के आना तो आपको और ज्यादा समझेगा। लो चौबीसों भगवान की। Yeah.